नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमराह जायरीन को ले जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। एक रिपोर्ट।
ये दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम के स्थान पर हुई। डीजल टैंकर से टकराते ही बस में तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक हैदराबाद के थे। हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सऊदी अधिकारियों और तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ संपर्क में है। पीड़ित के 4 अस्पतालों में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार और प्रियजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती मुर्मू ने बताया कि बैठक के दौरान आयोग ने वर्ष 2026 से 2031 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, जल बंटवारे के मुद्दों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। क्षेत्रीय परिषदें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीम भारत के दृष्टिकोण को पूरा कर रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ षड्यंत्र रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने संबंधी एक पत्र सौंपा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के वीडियो का खंडन किया है। इसमें दावा किया गया है कि उन्होंने सेना के खिलाफ बयान दिया है। वायरल वीडियो में जनरल द्विवेदी दावा कर रहे थे कि केंद्र सरकार के आदेश पर गैर जातीय हिंदू सैनिकों को सेना से हटाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट यूनिट ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो AI जनित है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश का MSME नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक बन गया है और देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा इकाइयां काम कर रही है। जापान के टोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रांजलि धूमिल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशभाल ने लगभग 236 अंक के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।